हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय से श्लोक संख्या 39, 40 और 41। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग दस से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्वंदनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादय च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमूषु पुरुष पुंक्ते गुणनशो दशषोडशात्मक सोलंकृशिश्च भगवान् वसंसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखं भुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरे स्कंद अध्याय से श्लोक संख्या 39। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं, स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानम् स संयच्छति पाति च स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानम् स संयच्छति पाति च स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानम् स संयच्छति पाति च स एष आद्यः पुरुषः। स एष वही भगवान जिसके बारे में अभी ब्रह्मा जी कह रहे थे कि उनको पूरी तरह से जानना संभव नहीं है, न मैं जान सकता हूँ, न शिव जी जान सकते हैं, न नारद मुनि जान सकते हैं, और उनको साधारण देवी देवता कैसे जान सकते हैं। वो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जब वो जीव जो है वो बहुत बहुत भगवान की भक्ति करता है, साधना करता है, अभ्यास करता है, तो फिर भगवान कृपा करते हैं, उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो भगवान को समझ कुछ कुछ समझने का अधिकारी हो सकता है। वो भगवान इतने महान हैं, उनके विषय में आगे कहते हैं स एष आद्यः पुरुषः। स एष वे वही आदि, मतलब आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबसे पहले हैं। वो पुरुष यानी महाविष्णु फिर क्या करते हैं, फिर वो अवतार लेते हैं महाविष्णु का, यानी कारण दक्षिणा विष्णु का। कल्पे कल्पे सृजत्यजः, अजय का मतलब होता है जिसका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भले आदि पुरुष हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी कल्पे कल्पे प्रत्येक कल्प में, अर्थात ब्रह्मा जी के हर एक दिन में, कल्प मना ब्रह्मा जी का एक दिन जिसकी आयु है 4,32,00,000 वर्ष। तो इस तरह से जब एक कल्प समाप्त हो जाता है तो फिर पुनः सृजन होता है, सृजन करते हैं, सृजते यजः, वो अजय हैं, लेकिन फिर भी सृजन उन्हीं के द्वारा होता है। उसके बाद क्या होता है, आत्मात्मात्मन्य आत्मानम्, आत्मना स्वयं, आत्मनि मन स्वयं में, स्वयं स्वयं में, आत्मना यानी स्वयं से आत्मनात्मनम्, अर्थात स्वयं को, वो स्वयं से संसार को सृजन करते हैं और फिर स्वयं में उस सारे संसार को लीन कर देते हैं। और स संयच्छति पाति च, संयच्छति मतलब लीन कर लेता है, पाति च पालन करता है, च वो स्वयं से संसार को प्रकट करता है और फिर पालन करता है और फिर लीन कर देता है। वो हालांकि वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो आदि पुरुष है, लेकिन हर कल्प में जो है संसार का सृजन और उसका प्रलय होता रहता है। क्योंकि भगवान जो है वो इतने करुणामयी है कि वो जीव को जब तक अपने धाम में वापस नहीं लेके जाते हैं ना, तब तक उनको बार बार अवसर प्रदान करते हैं। ये जीव की अपनी मूर्खता है कि वो भगवान का धाम छोड़कर इस भौतिक जगत में आ गया है, उसे भले ही चिंता न हो अपने पतन की, जीव भले ही बारंबार जन्म मरण के चक्कर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वो अब तक भगवत प्राप्ति के लिए अंदर से अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाता है, बार बार भौतिक इच्छाएं और भौतिक वस्तुओं की आसक्ति उसको इस संसार में लेकर आ जाती है, लेकिन भगवान उसे बार बार अवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीव का तब तक कल्याण नहीं हो सकता जब तक कि वो वापस अपने धाम में नहीं चला जाता, इसलिए भगवान बार बार सृजन करते हैं। अनुवाद देखिए, वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। स एष आद्या, वो आदि हैं, पुरुष है, लेकिन फिर भी हर कल्प में पुरुष यानी वो महाविष्णु का अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। भले ही ये सृष्टि भगवान ने की है, लेकिन वो सृष्टि का एक हिस्सा नहीं है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में बताया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्तुतः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में अर्थात निर्विशेष रूप में संसार के प्रत्येक कण में भगवान है। संसार भगवान पर ही टिका हुआ है, मस्तानि सर्वभूतानि, लेकिन न चाहं तेषु वस्तुतः, मैं संसार में नहीं हूँ। भगवान कहते हैं, श्री प्रभुपाद बता रहे, मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके पहलू का वर्णन नहीं कर पाती, अतएव वे अव्यक्त मूर्ति हैं, और इसी व्यक्त अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है। अथवा दूसरे शब्दों में, सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान है, और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक हैं। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप या पहलू पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णवजन भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से एक केवल एक पहलू है। यह श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार के प्रत्येक कण में वो निर्विशेष अव्यक्त स्वरूप से समाये हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका एक कृष्ण रूप है, जो कि इस सृजन से, इस जगत से पृथक है। वो गोलोक धाम में रहता है, लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अभी तक सुदृढ़ नहीं है, इसलिए भगवान के उस लोक में बैठे हुए उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं निर्विशेषवादी। इसलिए वो केवल समझते हैं कि संसार में जो निर्विशेष निराकार अव्यक्त स्वरूप है, वही भगवान का है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो तो जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि भगवान भले ही इस संसार के कण कण में है, लेकिन उनका एक स्वरूप भी है, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक पहलू है। भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं, और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारी मानव बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के निराकार साकार सारे रूपों को अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी क्या है, कि हम शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं उसको स्वीकार करें कि भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान कण कण में व्याप्त परमात्मा भी हैं। तो उसको स्वीकार करना है, और इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर भी ही संभव होती है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। केवल बहस करने से हम भगवान के किसी स्वरूप को नहीं समझ सकते, जैसे पहले बताया गया कि ये हमारी इंद्रियों के द्वारा समझे जाने वाली चीजें नहीं है। सेवा मुख्य ही जिहादो स्वयं एवं सुफूर्तिला, भगवान स्वयं जब हमारी भक्ति प्रगति होती है ना, तो भगवान अपने सारे स्वरूपों को हमारे सामने प्रकट करते हैं। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, अतएव वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि यह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता। जब वे सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं, यह अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में विस्तृत हो जाती है, वह अपने आदि मूल यानी रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संसार में जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को अलग अलग अंशों में विस्तारित कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? तो फिर वो जो अपना वास्तविक अस्तित्व है वो खो देगी। तो ये भौतिक वस्तुओं के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का मतलब है पूर्ण, यानी जो पूर्ण है, पूर्णमदा पूर्णमिदम। संसार में प्रत्येक वस्तु में रहने के टाइम पर भी वो पूर्ण है, और अपने भौतिक जगत में भी वो पूर्ण होने के साथ साथ अपने आध्यात्मिक लोक में जहाँ पर वो रहता है। ऐसा नहीं भगवान में से संसार निकला 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 फिर भगवान शून्य रह गया, ऐसा नहीं है। भगवान का अस्तित्व कभी भी खंड खंड नहीं हो रहा है, और पूर्ण मेवा वशिष्यते, उसमें से जो निकलता है आधा, पूर्णम आधाय, आधा भी वो पूर्ण ही है, और जो आधा बचता है वो भी पूर्ण है, और वो जिस भी कंडीशन में होगा वो पूर्ण ही होगा। वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो कभी खंडित नहीं होता है। आकिश्वर प्रभुपाद जी कहते हैं आद्य भगवान, आद्य यानी गोविंद महाविष्णु विस्तार के रूप में, अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारण सागर में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.47 में इसकी पुष्टि की इस प्रकार की गई है। यह कारण वचले बजते स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूप आधार शक्तिमवलंब्य पर समूर्ति गोविंदमादि पुरुष तमहं भजामि। जैसा कि पहले बताया गया कि ब्रह्मा जी आदि महाजन हैं, इसलिए ब्रह्मा जी की बात को मानकर ही हम भगवान के विषय में कुछ समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, यह कारण वजले स्वजति स्म योगे। ब्रह्मा जी बताते हैं मैं आदि भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने पूर्ण अंश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं। निद्राम अनंत जगदंड सरोप कूप, वो सो रहे होते हैं और उनके रोम कुपों से अनंत जगदंड यानी असीम ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनके दिव्य शरीर के रोम कुपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं, और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं। कारण सागर की उत्पत्ति भगवान द्वारा महतत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होते हैं, और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। कारण सागर में महतत्व के रूप में भगवान जो है वो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में, यानी बहुत बड़ा आध्यात्मिक आकाश है, और एक बादल के रूप में ये कारण सागर होता है, और फिर उसमें महाविष्णु का अवतार होता है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और महातत्व बादल भी है। वे लेटे रहते हैं और अपनी श्वास से ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदशय रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा, शिव तथा अन्य अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.7 में पुष्टि हुई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिमन्तिमामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो सारी सृष्टि अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और जब मैं पुनः इच्छा करता हूँ तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट हो जाती है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निष्कर्ष यह है कि ये सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर कैसे हुआ, ये क्या। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतना सब डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये जान लो कि सृष्टि जो है वो भगवान ने उत्पन्न की है और इस तरह से कारण दक्षा विष्णु के बाद गर्भोदशा विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट होते हैं। कारण जो विष्णु है वो पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, शिव जी प्रलय करते हैं, लेकिन मेन आधार, मूल आधार आद्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। तो इतना जानकर हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। आगे ब्रह्मा जी भगवान के विशुद्ध स्वरूप के विषय में वर्णन करते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो पूर्ण है, विशुद्ध है, उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है और वो अद्वय है। लेकिन उनको जानने के लिए हमें केवल अपनी इंद्रियों को संयम करके भगवान की सेवा में लगना होगा। जब हमारी इंद्रियां अविचलित होंगी, जब इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करेंगे, तभी भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अन्यथा व्यर्थ के तर्क करते रहेंगे, तो भगवान और भी हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यगवस्थितम सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम् ऋषि वेदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवासतर्कैः तिरोधीयेतर्विप्लुतम् विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितम् सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषि वेदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशय यदा तदेवा सत्तर्कै तिरोदीयेत विप्लुत। शब्दात् विशुद्धं केवलं ज्ञानम्। विशुद्ध मतलब भौतिक कलमश के बिना, बिल्कुल पवित्र, एकदम शुद्ध, जिसके अंदर भौतिक कलमश का रंश मात्र भी न हो। केवलम यानी शुद्ध तथा पूर्ण। केवलम मतलब वो पूर्ण है, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं। ज्ञानम अर्थात ज्ञानमय। प्रत्येक यानी सर्वव्यापी। सम्यक यानी पूर्ण रूप से। अवस्थितम यानी स्थित है। सत्यम पूर्णम अनादि अंतम। सत्य मतलब वह सत्य है, उनका कभी नाश नहीं होता, वो अनादि है। पूर्ण है मतलब वो कंप्लीट है। अनादि है जिसका कोई आदि ना हो, अंतम अर्थात जिसका कोई अंत न हो, निर्गुणम यानी भौतिक गुणों से रहित है, नित्यम शाश्वत है, अद्वयम अद्वितीय उनके जैसा और कोई नहीं। ऋषि वेदंती, ऋषि मतलब हे ऋषि नारद, वेदंती वे समझे जा सकते हैं, मुनया बड़े बड़े विचारकों के द्वारा, प्रशांत जब उनका शांत चित्त होगा, आत्म यानी स्वयं इंद्रिय, इंद्रिय उनकी विचलित नहीं होंगी, मन शांत होगा, आशया जब वो भगवान की शरण में जाएंगे। अविचलित इंद्रियों और शांत मन के साथ जब जीव भगवान की शरण में जाता है, यदा तदेव असत, यदा जब तद वह एव निश्चय ही असत न लागू होने वाला तर्क है, तर्कों द्वारा जब वो शांत इंद्रियों के द्वारा अविचलित मन के साथ भगवान की शरण में आएगा और तर्कों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास नहीं करेगा, तेरा दीयते, क्योंकि ऐसा जब करेगा तो विप्लुत हो जाते हैं, विप्लुतम यानी विकृत हो जाते हैं, फिर भगवान को भगवान समझ में नहीं आएंगे। जब तक हम हृदय से भगवान के शरणागति होकर उनकी सेवा नहीं करेंगे। अनुवाद, भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव से के समस्त कलमश से रहित हैं, वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्ति मंतम रूप हैं, वे सर्वव्यापी हैं, अनादि अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान का मूल्यांकन किया गया है। दिव्य भगवान जो शाश्वत हैं, शुद्ध हैं, उनके साथ साथ जो भगवान यहाँ भौतिक सृष्टि में होते हैं क्षणिक, उनके विषय में बताएगा। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी मायावादियों और वक्तों के विषय में बताएंगे कि मायावादी दर्शन भगवान को भौतिक शरीर से कुलुषित हुए बिना बताने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं होता। जब वे अवतार के रूपों में प्रकट होते हैं, यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा अमिश्रित कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतया अस्वीकार किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि संसार में जब वो आते हैं तो वो उनका स्वरूप जो है वो शुद्ध नहीं होता है, वास्तव में भगवान जो है वो शुद्ध है। लेकिन यहाँ पर भगवान के हर एक स्वरूप को कहा गया शुद्धम विशुद्धम, तो यानी कि मायावादियों की जो व्याख्या है उसको अस्वीकार किया गया, क्योंकि वो भगवान के शरीर को तो मानते ही नहीं है, भगवान के स्वरूप को तो मानते ही नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आस्वादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविज्ञा से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। मायावाद का क्या कहना है कि जब जीव अज्ञान से आवृत हो जाता है तो वो संसार में आता है और उसे एक शरीर प्राप्त होता है, लेकिन जब अज्ञान या अविद्या से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो वो परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर ये कहा गया है कि भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। यह तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। संसार में जीव जो आते हैं वो अपनी कर्मों के अनुसार उनको जन्म मिलता है और फिर वो उपाधियां ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान की विशेषता ये है कि भगवान स्वयं अपने इच्छा के अनुसार वो संसार में अवतार लेते हैं, तो जीव और भगवान की स्थिति बिल्कुल पृथक है। लेकिन मायावादी इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को ही स्वीकार नहीं करते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। भगवान कभी अविद्या का शिकार नहीं होते, भगवान कभी माया का शिकार नहीं होते। भगवान इस भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, वो विज्ञानम आनंदम, वो समस्त ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद से परिपूर्ण है। मध्य जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे जीवों में कलमश ग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जाहिर सी बात है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, बद्ध जीव जो कि कलमश से सदैव ग्रस्त होते हैं, उनको भला भगवान से क्या कंपेयर कर सकते हैं। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कलमश ग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती। भगवान के अंदर दूषित होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन जीव के अंदर होती है। और इसी क्योंकि वो अपने गुण को चेंज कर सकता है, इसीलिए तो वो मुक्ति के बाद अपने आप को शुद्ध गुण में लेकर आता है, यानी शुद्ध गुण स्वीकार करता है। लेकिन भगवान सदैव से उसी निर्गुण रहते हैं, वो किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। जो प्रवृत्ति भगवान में होती ही नहीं है, जीव भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है, विशुद्धम अपापविद्धम, अर्थात जीव आत्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन भगवान पापों से कभी भी दूषित नहीं होते। भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण से हमें समझाएंगे कि भगवान किस तरह से दूषित नहीं होते। जैसे सूर्य, सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होते। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विशुद्ध हो जाते हैं। वैसे तो सूर्य स्वयं किसी से भी दूषित नहीं होते, लेकिन जो उनकी किरणें हैं वो जिस वस्तु पे पड़ती हैं वो भी विशुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह भगवान कभी भी पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस लोक में प्रत्येक शब्द का उपयोग हुआ है। भगवान की शक्तिशाली विस्तारों के अस्तित्व से कोई वस्तु बाहर नहीं है। भगवान सब के भीतर हैं और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सब को आच्छादित करने वाले भी हैं। अतएव वे असीम हैं और जीव अति सूक्ष्म है। भगवान असीम है और जीव बिल्कुल सूक्ष्म है। जैसे भगवान का एक छोटा सा अंश है जो कि बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। भगवान विभू हैं, समुद्र हैं और जीव तो एक छोटी सी बूंद के समान है। वेदों में कहा गया है कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सब का अस्तित्व उन पर ही निर्भर है। वे हर एक के अस्तित्व क्षमता के जनन आधार हैं। संसार में जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, वो भगवान की सत्ता पर टिके हुए हैं। समस्त जीव जो हैं, उनके ही अस्तित्व के कारण हैं। भगवान के कारण सब समस्त जीवों का अस्तित्व जो है वो भगवान के ऊपर निर्भर है। वे समस्त सापेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्रोत हैं। अतएव ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्य धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष हैं। चूंकि वे पुरुष हैं, अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं। भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं, हम पहले ही इत्थम भूतो गुणो हरि श्रीमद् भागवतम 1.7.10 में इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि मुक्त आत्मा आत्माराम तक उनसे आकर्षित होते हैं। यदि भी वे समस्त व्यक्तिगत गुणों से युक्त हैं, तो भी सर्वशक्तिमान हैं, अतएव उन्हें स्वयं कुछ करना नहीं होता, क्योंकि उनकी सर्वथा सामर्थ्यवान शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभव नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान असीम है, भगवान शुद्ध है, भगवान परम है और समस्त वस्तुओं के अस्तित्व के आधार है। तो भौतिक चिंतन के द्वारा हम भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप है, इसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताए। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभव नहीं होता। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यमे वैश्य वृणु ते तेन लभ्यः। इस तरह भगवान तथा जीवों में कई मूल बातों में अंतर है, किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, जैसा कि वेदों में घोषणा की गई है, एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म द्वैताद्वय भयम् भवति। अर्थात भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, एकमेवा द्वितीयम्, दूसरा कोई नहीं, अतएव उन्हें किसी से ना तो भय है, द्वैताद्वय भयम् भवति, ना तो किसी से भय है और ना ही कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण है, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में ये कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उन्हें शत प्रतिशत यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, न यम विन्दति तत्वेन। इस श्लोक में भी यह बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि भक्तों को उनके जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं होती। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बताए कि जब तक हृदय के अंदर इच्छाएं हैं, भौतिक वासनाएं हैं, लालच है, जब तक भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है, इंद्रियां मन जब तक भौतिक वासनाओं से शुद्ध नहीं हुई है, तब तक तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। जब भक्त भी पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है और भगवान की शरणागति ग्रहण करके भगवान की सेवा करता है, जब सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम कंटिन्यूअस भगवान के भजन में लगा रहता है, तब भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान को समझ सकता है। तो फिर साधारण व्यक्ति जो केवल कामनाओं से भरे हुए हैं, भौतिक वस्तुओं के आकर्षण के द्वारा क्लूषित हैं, वो भला ऐसी अपूर्ण और दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान जो परम सत्य हैं, परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, पूर्ण हैं, उनको कैसे जान सकते हैं। वे तो उनके अज्ञानकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग जैसे कि ज्ञान मार्गी दार्शनिक योगी तथा सकाम कर्मी, उनकी कुछ न कुछ मांग रहती है, अतः वे प्रशांत नहीं हो सकते। सकाम कर्मी अपने कर्मों का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं और ज्ञान मार्गी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त के अतिरिक्त जितने भी हैं, जो भले भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी कुछ न कुछ मांग रहती है, और जब तक हृदय में कोई न कोई इच्छा आएगी ना, तब तक जीव प्रशांत नहीं रहता। तो सकाम कर्मी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम जो कार्य करें उसका हमें फल मिले। योगी जन क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमें कोई सिद्धि मिले। ज्ञान मार्ग में क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाएं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहेगी तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं होता। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह भगवान हमारी समझ से और भी दूर हो जाते हैं। किंतु शुष्क चिंतन, तपस्या एवं आत्म संयम के सिद्धांतों का पालन करते रहने के कारण भगवान के निर्विशेष पक्ष को कुछ हद तक जान सकते हैं, फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप है या अमल आत्मा है, वे ही भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 7.28 में हुई है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना बहुत बहुत जन्मों के पुण्यों के प्रताप के उपरांत संभव है। त्वन्तगतं पापं, जिनके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वो पुण्य कर्म करता है, और फिर जब वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाता है तभी वो भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ता से बच सकता है। और अगर जब तक हम भगवान के स्वरूप को दृढ़ता से भजन नहीं करते, फिर भले किसी भी स्वरूप में हमारा आकर्षण हो, निर्विशेष में, निराकार में, योग ध्यान में, परमात्मा में, लेकिन भगवान के वास्तविक स्वरूप के साथ संबंध जोड़ के उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने की स्थिति तब तक नहीं आती जब तक कि हम पूर्ण रूपेण इंद्रियों की मांगों से शुद्ध होकर भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेते। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, आजोवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि वीराट स्वराष्ठानुचरीषु भूमि। आद्योवतार पुरुष परस्य कालस्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि वीराट स्वराष्ठानुचरीषु भूमि। शब्दार्थ, आद्योवतार पुरुष परस्य, आद्यो मतलब प्रथम, अवतार मतलब अवतार, पुरुष मतलब कारण दर्शाए विष्णु, परस्य मतलब भगवान का। भगवान का प्रथम अवतार क्या है? कारण पुरुष यानी कारण दर्शाए विष्णु। काल स्वभाव सदसन मनुष्य, काल मतलब समय, स्वभाव मतलब आकाश, सत यानी फल, असत यानी कारण, मन यानी मन भी, द्रव्यम यानी तत्व। मनुष्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि, द्रव्यम अर्थात तत्व, विकार यानी भौतिक अहंकार, गुण यानी प्रकृति के गुण, इंद्रियाणि मतलब इंद्रिया, विराट स्वराट, विराट मतलब पूर्ण शरीर और स्वराट मतलब गर्भदर्शाय विष्णु, स्थाणु यानी अचर और चरिष्णु यानी चर, भूमि यानी भगवान का। अनुवाद देखिए, कारण दर्शाए विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे सनातन काल, आकाश, कार्य, कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप गर्भो दर्शाए विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। यहाँ पर भगवान के विषय में बता रहे हैं कि जो कुछ भी है उनके स्वामी, चाहे वो कारण दर्शाए विष्णु हो, चाहे गर्भो दर्शाए विष्णु हो, चाहे भौतिक तत्व हो या फिर कारण हो, कार्य हो, समय हो, जो कुछ भी है उनके स्वामी हैं, चाहे वो चर हो चाहे अचर जीव हो, जो कुछ भी है उन सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन है। अस्थायी मतलब यह भौतिक शक्ति टेम्पररी है, ये मतलब ये परमानेंट नहीं है। कभी भगवान इस भौतिक सृष्टि को रचते हैं तो कभी प्रलय हो जाता है। तो यह भौतिक प्राकृत्य उन मध्य जीवों को सु अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि जीव भगवान के साथ संबंध को स्वीकार ना करके इस भौतिक जगत में आ जाता है। इसलिए उनको दोबारा से चांस देने के लिए इस भौतिक जगत की रचना की जाती है। ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व से के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में खुद भोग करना चाहते हैं। सारे जीव वैधानिक रूप से भगवान के सनातन सेवक हैं, किंतु इनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते। अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या ब्रह्म का भोग करने दिया जाता है। यह ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि माया के चुंगल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते हैं। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। बहुत ही सुंदर रूपा जी हमारी वास्तविकता समझा रहे हैं कि जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है कि आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। आध्यात्मिक जगत में जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्णदास। लेकिन जीव सोचता है कि जीव भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, वो स्वयं भोग करना चाहता है। इसलिए वो आध्यात्मिक जगत को अस्वीकार करके भौतिक जगत को स्वीकार करता है और यहाँ पर आके स्वयं भोक्ता बनना चाहता है। लेकिन फिर भी यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भले ही मोह के कारण, माया के चुंगल में फंसे हुए होने के कारण, भ्रम के कारण ये सोचता है कि मैं भोक्ता हूँ, यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वो अपने को ही भोक्ता समझते हैं, लेकिन वो स्वयं भोक्ता होते नहीं है, क्योंकि भोक्ता तो भगवान ही है। ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रह कर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदैश्च सर्वै अहम् एव वेद्यो। सारे वेदों के द्वारा सिर्फ इतना ही जानना है कि कृष्ण पूर्ण है, हम उनके दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। हमारा अपना स्वरूप है कृष्ण के दास के दास बनकर। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? कृष्ण स्वामी है। जब स्वामी प्रसन्न होते हैं तो दास स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इसी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्थता करने के लिए भगवान कारण दर्शाए विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये कारण दर्शाए विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके सइक्षता भौतिक सृष्टि कराते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जिग्रेह पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, फिर इंद्रियां तथा उनका आगार स्रोत विराट विश्व रूप जो गर्भोदशा विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार हैं, और समस्त चराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततो गत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भौतिक सृष्टि में यह पहला अवतार कारण दर्शाए विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब कुछ प्रकट होने के बाद ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततो गत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भौतिक सृष्टि में यह पहला अवतार कारण दर्शाए विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कारण के पूर्णांश हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य, जिनके एक श्वास लेने से अनेकानेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा, और वो जगदंडनाथा इतने उनके ब्रह्मांड जो हैं वो प्रकट होते हैं। विष्णु महान से इह यस्य कला विशेष, वो महान विष्णु भी जिनके केवल एक कला मात्र है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उस गोविंद के शरण में हूँ, उन्हीं का भजन करता हूँ। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारण रक्षा विष्णु के श्वास छद्राम से की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्ण अंश हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं। वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वो समस्त कारणों के आदि कारण हैं। उन्हीं की इच्छा से संसार बारंबार प्रकट होता है और उन्हीं की इच्छा से अंत में संसार का नाश हो जाता है, और हमें उन्हीं भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमें अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।